नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में साइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।